हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवा अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारुण बिंबफलाधरोष्ठात् पुरेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यनन्द श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं कुरु तु वाचारं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 13। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सर्वे तीनि मिशैरक्षैस् तमनुरुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे तीनि मिशैरक्षैः तमनुरुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे तीनि मिशैरक्षैः तमनुरुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे तीनि मिशैरक्षैः तमनुरुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्र शब्दों का अर्थ देखिए। सर्वे ते निमिषय रक्षय, सर्वे अर्थात सभी, ते मतलब वे, निमिषय अर्थात बिना पलक झपके, यहाँ सूत गोस्वामी उन समस्त हस्तनापुर के विरह विदा में जो व्याकुल हो रहे हैं, जो भगवान अब क्योंकि हस्तनापुर से अपना कार्य समाप्त करके पुनः द्वारिका की ओर जा रहे हैं, तो हस्तनापुर वासियों की क्या दशा हो रही है उसके विषय में बता रहे हैं। जैसे कि हमने श्लोक नंबर 12 में पढ़ा, सत्संगान मुक्त दुःसंगो हातुम नोत्सहति बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृत्ता कर्ण रोचनम तस्मिन् यस्तदिह पार्था सहेरन विहरम कथम दर्शन स्पर्शन संलाप शयना सन भोजन। कि जिस बुद्धिमान ने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से नहीं चूकता। अर्थात एक बार जो भगवान के यश को सुन लेता है, सकृत दाकरण रोचनम, एक बार भी यदि उसे भगवान के यश गान को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो सहेरन विरहम कथम, फिर वो कैसे उसके बगैर रह सकता है। तो जब भगवान के केवल यश गान सुनने से, जैसे हम जानते हैं कि जब हम भागवतम को श्रवण करते हैं और बहुत सारा समय किसी कारण से हम श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, तो हृदय में एक बहुत दुख हो रहा होता है कि क्यों भगवान हम श्रवण से अभी हम श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमें अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, काश कुछ ऐसा हो, क्यों हमें आपने भगवत कथा को श्रवण करने से वंचित कर दिया। तो हृदय में एक बहुत दुख हो रहा था जिस कौन, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं व्यास सूत गोस्वामी, हाँ तुम नोत्सहते बुद्ध, जो वास्तव में बुद्धिमान है, जो वास्तविकता को जानते हैं, जो जानते हैं कि मैं ये आत्मा हूँ, मेरा संबंध कृष्ण से है, तो वो यदि भगवत कथा श्रवण करना उसको अगर प्राप्त नहीं होता है तो बहुत दुखी हो जाता है। तो फिर वो हस्तिनापुर वासी जो कि साक्षात कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया था, जिन्होंने कृष्ण के साथ बात करते थे, कृष्ण का दर्शन करते थे, कृष्ण के साथ सोते थे, बैठते थे, खाते थे, तो भला वो कृष्ण से दूर रहकर कैसे सुखी रह सकते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थे। यहाँ पर सुत गोस्वामी ने बताया, पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते थे, बैठते थे, भोजन करते थे। अर्थात ऐसे जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठता हो जाती है, तो अगर इस भौतिक जगत में भी हम देखें, किसी के साथ हमें बहुत ज्यादा संबंध ये समय बिताने के लिए यदि मिलता है तो उसके बगैर रहना बहुत कठिन हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं उसके साथ, हालांकि अगर देखा जाए तो ये देह छूने लायक नहीं है। इस देह के अंदर जब तक आत्मा है ना, तभी ये छूने लायक है, क्योंकि देह हम आत्मा को तो छू नहीं सकते, लेकिन आत्मा जब किसी शरीर के अंदर आ जाती है तो वो शरीर प्रेम करने योग्य हो जाता है। वास्तव में शरीर के अंदर कुछ ऐसा नहीं। जब आत्मा निकल जाती है फिर वो देह छूने लायक नहीं रह जाता, फिर वो उसको घर पे रखा नहीं जा सकता, फिर वो इतना अपवित्र हो जाता है कि यदि उसको छू लिया जाए तो कपड़ों समेत स्नान करना पड़ता है। वही देह जब उसके अंदर आत्मा आ जाती है तो कितना प्रेम हो जाता है हमारा उसके साथ, उसको देखना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं, उसको प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल कंडम जीव के अंदर, ये जो शरीर के अंदर जब आती है तभी भी उससे इतना लगाव हो जाता है, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चिदगंध आनंदगण, जो सचित आनंद विग्रह हैं, जिनको हस्तिनापुरवासियों को जब साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया था तो भला वो उनका वियोग कैसे सह सकते थे। तो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और आज सुत गोस्वामी कह रहे हैं सर्वे ते निमिषय रक्षय, कि अब जब कृष्ण जा रहे थे तो अनिमिषय मतलब वो कंटिन्यूस भगवान, अनिमिषय मतलब वो पलक को, निमिष का मतलब होता है पलक झपकना, वो पलकों को झपकने की परमिशन नहीं दे रहे थे। वो अपनी पलकों को कह रहे थे कि खबरदार जो तुम झपकी, अगर तुमने झपक लिया तो फिर वो एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, अपने सारे कब पाएंगे। इसलिए वो अक्षय निमिष है, अक्षय यानी कि अपनी आंखों को डायरेक्ट से भगवान की ओर टिकाए हुए थे, अपनी पलकों को झपका नहीं रहे थे, कंटिन्यूस कृष्ण को देख रहे थे और चाहते थे कि कृष्ण को अपनी आंखों में भर ले। क्योंकि आपके जब वो वापस द्वारिका चले जाएंगे तो न जाने अब इन आंखों को कब दोबारा उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो तम अनुद्रुत चेतसा, तम अनुद यानी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, जिधर जिधर कृष्ण जा रहे हैं। अब क्योंकि सबसे कृष्ण विदा ले रहे हैं, कभी गुरुओं के पास जा रहे हैं, कभी कुंती महारानी के पास जा रहे हैं, तो कभी किसी जहां पर भी जा रहे हैं तो सब उनके पीछे पीछे, कृष्ण से एक सेकंड के लिए भी वो दूर होना नहीं चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबको एक स्नेह पाश में बांध दिया हो कृष्ण ने। द्रुत चेतसह का मतलब होता है बहुत द्रवित हृदय, हृदय इतना विदीर्ण था, हृदय फट रहा था कि अब कृष्ण हमें छोड़ के चले जाएंगे। और वीक्षन्ते, वो केवल उन्हीं को एक टक देखे जा रहे थे। वीक्षन्ते का मतलब है भगवान को देखे जा रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? एक संबंध, स्नेह संबंधा, क्योंकि शुद्ध प्रेम का संबंध था उनके और कृष्ण के बीच में। और वो संबंध एक ऐसी डोरी थी कि जिधर जिधर कृष्ण जा रहे थे तो तत्र तत्र ही वो वहां पर वैसे उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। जैसे कैसे एक कोई गाड़ी होती है ना, कोई बड़ा ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो, उसका इंजन फेल हो जाता है, फिर क्या करते हैं कि दूसरी एक गाड़ी जिसका इंजन ठीक होता है उसके साथ उसको बांध देते हैं। फिर जो सही वाली गाड़ी है वो जिधर जिधर जाती है तो जो जिसका इंजन फेल है तो उसके साथ साथ ही जाना पड़ता है उसको, वो वो विवश हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। तो इसीलिए सबका हृदय कृष्ण ने खींच लिया था, बुद्धि कृष्ण में रम गई थी। तो अब किधर किधर कृष्ण जा रहे हैं, सब उधर उधर ही उनके साथ स्नेह संबंध के साथ वेचेलो हिलने, मतलब उसी तरह से हिल रहे थे जैसे कृष्ण जाते थे, उसी तरह तत्र तत्र ही, तत्र मतलब इधर उधर ही वो जा रहे थे ऐसे ऐसे, यानी कृष्ण के पीछे पीछे वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उनकी आंखें, यहाँ पर नेत्रों के विषय में बता रहे हैं, सर्वे ते निमी क्षय रिक्षय, कि सबसे ज्यादा अफसोस तो आंखों को हो रहा था कि अब इन आंखों को भगवान के सुंदर मुखारविंद के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए आंखों ने झपकना छोड़, अनिमी क्षय उन्होंने झपकना छोड़ दिया था और वो एक तत्वारी का देश को देख रही थी। मानो कह रही हूं, देख लो जितना देखना है जी भर के, फिर न जाने इस जन्म में दोबारा ये सौभाग्य प्राप्त हो अथवा ना हो। वास्तव में भक्तों, सानिध्य, ये जो रूप है भगवान का, स्वरूप जो है उसका संबंध नेत्रों से होता है। अगर भगवान साथ में होते हैं तो नेत्र तृप्त होते हैं, अथवा जब भगवान कहीं दूर दूसरी जगह पे जाते हैं तो हृदय तो उनके साथ ही जाता है, मन तो कहीं भी चला जाए भगवान के साथ। जैसे जब गोपियों भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब गोपियां बहुत रोती थी और दुखी होती थी, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि उद्धव जाओ तुम गोपियों को समझाओ कि मैं तो हर जगह पे हूं ना। तो उद्धव आए और कहने लगे कि आप इतना क्यों दुखी हो, आप इतना क्यों रो रहे हो, भगवान तो सब जगह है, सबके हृदय में है, वो भगवान ब्रह्म के रूप में हर एक जगह है, क्या तुम्हें पता नहीं। तब गोपियां कहती हैं, व्यापक ब्रह्म सभय थल पूरन है हम हूँ पहचानती, हम जानती हैं कि वो ब्रह्म है, हम जानती हैं कि सर्वत्र वो है, पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरि चरण में ज्ञान ही ठानती है। ये ज्ञान जो तुम हमें बता रहे हो ना, वो हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है, हम उसके बगैर रहना नहीं चाहते हैं, भले ही वो सर्वत्र समाया हुआ है, परंतु देखो उद्धव तुम उसका संदेश लेकर हमारे पास आयो ना, तो एक हमारा संदेश भी उसके पास लेकर जाओ, हमारी केवल एक बात बताओ उसे जाकर, एक सिर्फ एक संदेश है हमारा। गोपियां कहती हैं, तुम उद्धव ये कहिए उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे बिन निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं, हम तो अपने मन को समझा ले, बल्कि मन को क्या समझाना, वो तो हर क्षण तुम्हारे साथ है, पर ये अखियां ये आंखें रोती रहती हैं, चुप नहीं करती, हम चाहे कुछ भी बताएं उसे लेकिन उसके आंसू नहीं थमते। तो इसी तरह से नेत्र बहुत व्याकुल है भगवान को देखने के लिए, क्योंकि एक बार जिसने नंदनंदन का स्वरूप देखा, अब वो कृष्ण को देखे बगैर कैसे रह सकते हैं। अनुवाद, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें पलक नेत्रों से देख रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंध कर चिंता से यत्र तत्र दौड़ रहे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे सभी अमर जीवों में अग्रणीय हैं, एकमात्र वे ही अमरों के अमर हैं, ऐसा कठोपनिषद का वचन है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वह माया के वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार इस संबंध ने पुनर्जीवित हो जाने पर बद्ध जीव एक बार इस संबंध के पुनर्जीवित हो जाने पर बद्धजीव माया से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल होता है। यह संगति भगवान के स्पर्श से ही नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को शुद्ध भक्त से स्वने सविनय श्रवण करके इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। अत्यंत सुंदर सिद्धांत श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि आज जो हस्तिनापुर वासियों का हाल है कि वो भगवान के बगैर, भगवान को देखे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते, भगवान के साथ जो उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। वास्तव में जीव का संबंध केवल कृष्ण के साथ है, परंतु माया के कारण हम उस संबंध को भूल चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जब हमारे साथ भगवान रहेंगे, हम उसे स्पर्श करेंगे, उनके साथ रहकर ही संबंध पुनः स्थापित हो सकता है। भगवान का नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी हम उतनी उत्कंठा अपने हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम हमको श्रवण करने के लिए मिला है, यदि शुद्ध भक्तों से सविनय हम इसको श्रवण करते हैं, हम उसको श्रवण करके भी अपने हृदय में सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। बहुत बहुत साधन करना है अभी। उस दिन प्रेम का पता चलेगा जिस दिन हमारी बुद्धि एक मिनट के लिए भी कृष्ण से दूर न हो, समझो फिर भक्ति स्टार्ट होगी। यत्नाग्रह भक्ति न जन्मा ये प्रेम। जब तक भक्ति के अंदर आग्रह नहीं होगा, यत्न नहीं होगा, तब तक जब तक लालसा नहीं होगी, जैसे हमें खाने के प्रति कैसी लालसा होती है, ये खाया जाए वो खाया जाए, उसी तरह जब कृष्ण के प्रति लालसा होगी कि कृष्ण को देखा जाए, इस तरह से कृष्ण को सुखी किया जाए, इस तरह से कृष्ण के साथ प्रेम किया जाए, इस तरह कृष्ण के साथ समय बिताया जाए, जब तक ये लालसा नहीं आती, तब तक समझो अभी भक्ति का रस नहीं आया है जीवन में। तो ये कैसे आएगा? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को शुद्ध भक्ति से सविनय श्रवण करके इस अवस्था को प्राप्त कर जा सकता है, करने के लिए ही प्रशिक्षित प्रदान करती है। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, श्लोक नंबर 14, न्यरुंधन उत्कलत भाष्पम ओत्खंड्यत देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्याद् भांडवस्त्रियः न्यरुंधन उत्कलत भाष्पम ओत्कंठ्यात् देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्याद् भांडवस्त्रियः न्यरुंधन उत्कलत भाष्पम ओत्कंठ्यात् देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्याद् बांधवस्त्रियः न्यरुंधन उद्गलत भाष्पम ओत्कंठ्यात् देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्याद् बांधवस्त्रियः न्यरुंधन उत्कलत भाष्पम ओत्कंठ्यात् देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्याद् बांधवस्त्रियः। शब्दात् न्यरुंधन मतलब बड़ी मुश्किल से रोकते थे, उनको बहुत आंसू आ रहे थे, वो अपनी पलकों को नहीं झपका रही थी, सब अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी, उद्गलत आंसुओं को रोक रही थी, लेकिन वापस वापस से आंसू उमड़ आते थे। आंखों को कौन समझाए कि अब तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब किसी को विदा देते है ना, तो ऐसा विधान बनाया गया है कि जब कोई जा रहा होता है तो फिर उसको रो कर विदा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब रोता हुआ हमारा प्यार जिसे हम प्रेम करते हैं रोता हुआ विदा करेंगे तो रास्ते में उसको वही रोता हुआ ही दिखेगा, फिर उसका मन बहुत विचलित हो जाएगा। इसलिए जब कोई जा रहा होता है तो उसे रो कर विदा नहीं करना चाहिए, हंसता हुआ विदा करना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई किसी को हम रोता हुआ विदा करते ना तो उसके लिए अपशकुन होता है, तो इसलिए जो भी जा रहा होता है तो शास्त्र कहता है उसे हंसी हंसी विदा करना चाहिए। तो यहाँ पर उन वो सब हस्तिनापुर के जो वासी थे अब भगवान को विदा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान ने हमें रोता हुआ देख लिया तो फिर भगवान के ना उनके लिए अपशकुन होगा, उनको खराब होगा, उनका चिंतन ऐसा हमारा ऐसा आएगा रोता हुआ। तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि रोता हुआ मुंह नहीं देखे हमारा। तो क्या कर रही थी सारी स्त्रियां, छुप छुप कर कैसे भी करके वो अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकना चाह रही थी, लेकिन आंसू फिर भी उद्गलत वापिस वापिस बह रहे थे, उमड़ते थे, तो फिर वो अपने आंसुओं को छुप कर पहुंच देती थी ताकि कृष्ण को ना दिखाई दे। बाष्पम का मतलब होता है आंसुओं को, उत्कंठा यानी अत्यंत उनको बहुत उत्सुकता हो रही थी भगवान के जाने के कारण, वो बहुत व्याकुल हो रहे थे, कृष्ण के वियोग को वो सह नहीं सक रहे थे। वो जानते थे कि कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब कृष्ण जब विदा हो रहे थे तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर वो अपने आंसुओं को निर्यात ये घारान ओ अभद्र, यानी कि वो जैसे ही आंसू निकल रहे थे वो उसको साफ और है ना वो उनको साफ कर देती थी, और जैसे भगवान जा रहे थे तो फिर वापस से उनको आंखों में आंसू आ रहे थे, तो फिर वो क्या करती अभद्र अभद्र इति स्यात्। वो ये सोच रहे थे कि कहीं भगवान के लिए अशुभ ना हो, तो इसे बार बार अपने आंसुओं को साफ करके वो भगवान के सामने अपना हंसता हुआ मुख दिखा रही थी ताकि भगवान चिंतित ना हो हमारी वजह से। निरुंदन उद्गलत भाषम, निरुंदन का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से अपने उमड़ते हुए आंसुओं को, बाष्पम मतलब अपने आंसुओं को, उत्खंडात जो बहुत ही उत्सुकता के कारण, देवकी सुत है देवकी सुत के जाने निर्याति जब वो जा रहे थे बाहर तो कहाँ से जा रहे थे अगारात, अगारात मतलब महल से जब वो बाहर जा रहे थे तो उनकी आंखें बहुत व्याकुल हो गई थी कि अब क्योंकि दिखाई नहीं देंगे कभी भी, पता नहीं न जाने कब उनका सानिध्य प्राप्त हो, तो उनकी आंखों से अहर्निश आंसू बह रहे थे जिनको निरुद्धन मतलब बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखों में ही रोक रही थी। क्यों रोक रही थी, क्या कारण था कि अभद्रम कि कहीं इस कारण से भगवान का अभद्र न हो पाए, कहीं भगवान के लिए अपशकुन इति स्याद बांधव स्त्री, यही सोचकर अनुवाद देखिए, संबंधियों की स्त्रियां जिनके नेत्र कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुओं से पूरित थे महल से बाहर आ गईं, वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं। उन्हें भय था कि विदाई के समय आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं, वे सभी कृष्ण को प्रिय थीं, सभी उनकी संबंधिनी भी थीं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण इस महल से अपनी प्रिय भूमि की ओर जा रहे हैं तो वे उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो उठी और उन सबों के अश्रु सामान्य रूप से लुढ़क लुढ़क कर कपोलों पर आने लगे। वो रो रही थी, दुखी थी, क्योंकि कृष्ण का विरह वो सह नहीं सक रही थी, तो वो कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी उनके आंसू उनके गालों तक आ रहे थे। उस समय उन्होंने सोचा कि उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतएव अश्रुओं को रोकना जारी थी। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे, अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पहुंचा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या श्वसुर युद्ध में मारे गए थे कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। यानी कि कुछ स्त्रियां ऐसी थी जिनके पति की अभी मृत्यु हुई थी या घर में कोई ससुर वगैरह की, तो डायरेक्ट से हस्तिनापुर महल में आकर भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकी थी, लेकिन फिर भी वो भी कृष्ण के विषय में सुनती थी, उनसे बात उनके विषय में बात करती थी, उनकी चर्चा में भाग लेती थी। तो भले ही वो प्रत्यक्ष भगवान के साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका भी स्नेह कृष्ण की ओर इतना बढ़ गया था जैसे उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो कि उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। वास्तव में भक्तों, कृष्ण का मतलब ही है आकर्षित करने वाला। जो आकर्षित करे वो आकर्षी इति कृष्ण, तो कृष्ण के संपर्क में आप चाहे प्रत्यक्ष रूप में आ जाओ या अप्रत्यक्ष रूप में, कृष्ण तो अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है, वो अपनी ओर अनुरक्त कर ही लेता है। तो सब जो भी हस्तिनापुर में रहते थे, क्योंकि अब कृष्ण का की ही चर्चा हो रही थी युद्ध के बाद हर जगह पे, तो सब कृष्ण से स्नेह कर रही थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण परम है, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति से ही ऐसा हो पाता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। कितना सौभाग्य है उन हस्तिनापुर वासियों का जिनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा चित्त कृष्ण में रमा हुआ है। क्योंकि अब कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे हैं तो सब लोग व्याकुल हैं। वो अपने आंसुओं को छुपा रही हैं ताकि कृष्ण का अपशकुन उसके लिए ना हो। वो कृष्ण की जुदाई को अपने हृदय में समेटे हुए हैं। वास्तव में भक्तों, यही जीवन का लक्ष्य है कि कृष्ण का विरह फील हो। हम अभी कृष्ण से हम सब दूर हैं, हमें लेकिन हम कभी भी कृष्ण से उस जुदाई को महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी कृष्ण से अपने उस विरह को महसूस करने लग जाए ना, तो एक सेकंड के लिए हमारे अश्रु भी नहीं रुके। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, वो दिन कब आएगा कृष्ण, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगदरुत्थया किरा पुलकायनिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणी भविष्यति। हे कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब तुम्हारा नाम लेते हुए मेरे नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहेंगी, गदगदित होकर मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा, मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठेगा। वास्तव में वो विरह वेदना को महसूस करना ही भक्ति है। जब कृष्ण के बिना एक एक पल एक एक वर्ष के समान, जैसे महाप्रभु कहते हैं, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंदं विरहेण मे। युगायितं निमेषेण, एक एक निमेष एक एक क्षण जो है वो हमें वर्षों की तरह लगने लगे और नेत्रों से वर्षा की तरह अश्रु धाराएं बहने लगे
और ये सारा संसार शून्य सा प्रतीत होने लगे। तब जब कृष्ण के विरह में एक एक सांस लेना भी कठिन हो जाए, वो है वास्तविक भक्ति, वो है वास्तविक प्रेम। अभी तो हम हर जगह पर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह पे आनंद ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एक प्रेमी जो होता है वास्तव में, उसे कहीं से नहीं आता, वो केवल और केवल अपने प्रीतम का दर्शन करना चाहता है, उसका स्पर्श करना चाहता है, उसका सानिध्य चाहता है। उसी वही हाल जब एक भक्त का हो जाता है, तभी उसी को वास्तविक भक्ति कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हम कृष्ण के साथ अपने उस घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के पवित्र शब्दों का कीर्तन करेंगे, तो फिर हम उस स्थिति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति से ही ऐसा हो पाता है। जब आध्यात्मिक शक्ति, जैसे कि शुद्ध भक्तों का, शुद्ध वैष्णवों का सानिध्य जब प्राप्त होता है, जो स्वयं कृष्ण से मिले हुए हैं, कृष्ण के विरह को महसूस करते हैं, जो कृष्ण के सानिध्य को महसूस करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का जब सानिध्य प्राप्त होता है, तो अवश्य हमारा भी हृदय, जो कि इतना कठोर है, कृष्ण के विरह को महसूस नहीं कर सकता है। तो फिर शुद्ध भक्तों, इस तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति से ही ऐसा हो पाता है। तो हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो कि हम भी भगवान के उस पवित्र प्रेम को रियलाइज कर सकें। और उसी तरह से, जिस तरह से ये सब रो रहे हैं हस्तिनापुर के वासी भगवान के वियोग में, उसी जुदाई को हम भी महसूस कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। मुझे आप सबकी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्ण।